नमस्ते, मैं आराव हूँ। 9 Nut Tree के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ UX, आइरीन पेरेरा की यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन पर एक संदर्भ पुस्तक है। इसका उद्देश्य किसी तय सॉफ्टवेयर स्क्रीन या तकनीकी प्रक्रिया का पाठ पढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों और तकनीक के बीच बेहतर संवाद बनाने के लिए डिजाइनर की सोच को व्यापक करना है। पुस्तक में 100 सिद्धांत, दिशा निर्देश, मानवीय पूर्वाग्रह और व्यावहारिक विचार शामिल हैं। इन्हें 6 श्रेणियों, कंसीडर, एम्पथाइज, डिफाइन, रिसर्च, डिजाइन और वैलिडेट में व्यवस्थित किया गया है। हर सिद्धांत को संक्षिप्त व्याख्या, उपयोग के संकेतों और दृश्य उदाहरणों के साथ 2 पृष्ठों में प्रस्तुत किया गया है। पेरेरा का दृष्टिकोण वास्तविक पेशेवर परियोजनाओं में मिलने वाली उलझनों, विरोधाभासों और निर्णयों से आकार लेता है, इसलिए यह पुस्तक पूर्ण या सार्वभौमिक रूप से सही अनुभव बनाने का दावा नहीं करती। इसके बजाय यह पाठक को यह समझने में मदद करती है कि संदर्भ, उपयोगकर्ता, उद्देश्य और सीमाओं को साथ रखकर किस तरह विवेकपूर्ण डिजाइन निर्णय लिए जाए। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, 6 श्रेणियां UX को स्क्रीन सजावट से निर्णय प्रक्रिया बनाती है। पुस्तक की 6 श्रेणियां कंसिडर, एम्पथाइज, डिफाइन, रिसर्च, डिजाइन और वैलिडेट UX कार्य को एक उपयोगी क्रम देती है। हालांकि इन्हें कठोर रैखिक चरणों की तरह नहीं पढ़ना चाहिए। कंसिडर का अर्थ है समस्या के सामाजिक, व्यावसायिक और तकनीकी प्रभावों पर पहले विचार करना। एम्पथाइज उपयोगकर्ता के अनुभव, जरूरतों और परिस्थितियों को समझने की मांग करता है। डिफाइन अस्पष्ट इच्छाओं को ऐसी समस्या में बदलता है जिस पर टीम काम कर सके। रिसर्च अनुमान की जगह साक्ष्य लाने का माध्यम है। डिजाइन संभावित समाधान को रूप देता है और वैलिडेट जांचता है कि समाधान वास्तव में अपेक्षित ढंग से काम कर रहा है या नहीं। यह विभाजन महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सी डिजिटल परियोजनाएं सीधे इंटरफेस बनाने से शुरू हो जाती हैं। उस स्थिति में सुंदर स्क्रीन भी गलत समस्या का समाधान कर सकती है। पुस्तक का ढांचा डिजाइनरों के साथ इंजीनियरों, प्रबंधकों और विद्यार्थियों के लिए साझा भाषा बनाता है। वे किसी निर्णय पर असहमति होने पर यह पूछ सकते हैं कि कमी उपयोगकर्ता समझ में है, समस्या की परिभाषा में है, शोध में है या परीक्षण में। इस तरह UX व्यक्तिगत स्वार्थ का विषय, कम और जांचे जा सकने वाले निर्णयों की प्रक्रिया अधिक बनता है। दूसरा, डिजाइन तटस्थ नहीं है और चुनाव आसान बनाना जिम्मेदारी है। पुस्तक के उल्लेखनीय सिद्धांतों में डिजाइन इज नॉट न्यूट्रल और मेक द चॉइस इजी शामिल है। पहला सिद्धांत याद दिलाता है कि किसी इंटरफेस की भाषा, क्रम, डिफॉल्ट विकल्प, दृश्य प्रमुखता और बाधाएं उपयोगकर्ता के व्यवहार को प्रभावित करती है। इसलिए डिजाइनर केवल सूचना प्रस्तुत नहीं करता, वह निर्णय के वातावरण को भी आकार देता है। उदाहरण के लिए, किसी विकल्प को अधिक स्पष्ट, तेज या प्रमुख बनाना उसे व्यवहारिक रूप से अधिक आकर्षक बना सकता है या प्रभाव उपयोगी भी हो सकता है, जैसे जरूरी जानकारी को समझने योग्य बनाना। लेकिन इसका दुरुपयोग भी संभव है यदि उपयोगकर्ता को भ्रमित करके अवांछित निर्णय की ओर धकेला जाए। मेक द चॉइस इजी का अर्थ हर विकल्प हटाना नहीं है, इसका अर्थ है लक्ष्य, परिणाम और अगले कदम को इतना स्पष्ट करना कि व्यक्ति अनावश्यक मानसिक बोझ में ना फंसे। विकल्पों की संख्या, उनके नाम, तुलना की सुविधा और गलती सुधारने की संभावना, सभी निर्णय की गुणवत्ता बदलते हैं। पुस्तक इस विषय को केवल रूपांकन की समस्या नहीं मानती, यह शक्ति, प्रभाव और जवाबदेही का प्रश्न बनाती है। बेहतर UX में उपयोगकर्ता की समझ और नियंत्रण बढ़ना चाहिए, न कि केवल रूपांतरण या त्वरित क्लिक। तीसरा, जटिलता घटाने की सीमा और पूरे इकोसिस्टम को देखने की जरूरत, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स ऑफ UX का एक उपयोगी संतुलनकारी विचार है। सम कॉम्प्लेक्सिटी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। डिजिटल उत्पादों में सरलता का लक्ष्य अक्सर उचित है, लेकिन हर जटिलता खराब डिजाइन से पैदा नहीं होती। कुछ कार्य स्वभाव से बहुस्तरीय होते हैं क्योंकि उनमें नियम, जोखिम, विकल्प या अलग अलग हितधारक शामिल होते हैं। ऐसी स्थिति में आवश्यक जानकारी छिपा देना अनुभव को सरल नहीं बल्कि भ्रामक बना सकता है। पुस्तक का संदेश यह है कि डिजाइनर को गैर जरूरी घर्षण हटाना चाहिए, पर उपयोगकर्ता से वास्तविकता नहीं छिपानी चाहिए। इसी से मैप द इकोसिस्टम जैसा सिद्धांत जुड़ता है। कोई सेवा केवल एक ऐप स्क्रीन नहीं होती, उसमें लोग, प्रक्रियाएं, सहायता तंत्र, भुगतान नीतियां, उपकरण और सेवा के पहले तथा बाद के अनुभव जुड़े हो सकते हैं। यदि टीम केवल स्क्रीन सुधारती है मगर पीछे की प्रक्रिया अस्पष्ट या धीमी है तो उपयोगकर्ता की समस्या बनी रहती है। इकोसिस्टम मानचित्रण निर्भरताओं और टूटने वाले बिंदुओं को दिखाता है। इससे यह समझना संभव होता है कि समाधान इंटरफेस में बदलाव है, बेहतर सूचना है, सेवा प्रक्रिया का संशोधन है या कई विभागों के बीच समन्वय। यह दृष्टि UX को उत्पाद की सतह से निकालकर पूरी सेवा की गुणवत्ता से जोड़ती है। चौथा, स्क्रॉलिंग। दृश्य संकेत और संदर्भ के माध्यम से व्यवहार को समझना। पुस्तक में सो यू थिंक यू कैन स्क्रॉल जैसा सिद्धांत उस आम धारणा पर प्रश्न उठाता है कि उपयोगकर्ता हर सामग्री को स्वाभाविक रूप से नीचे तक पढ़ेगा। स्क्रॉल करना तकनीकी रूप से आसान हो सकता है, पर उपयोगकर्ता को पहले यह संकेत मिलना चाहिए कि नीचे मूल्यवान सामग्री मौजूद है। स्क्रीन के आरंभ में अस्पष्ट शीर्षक, भरी हुई दृश्य संरचना, धीमा लोडिंग या कमजोर प्राथमिकता व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक सकती है। इसलिए स्क्रॉलिंग को केवल एक हावभाव नहीं, सूचना संरचना और अपेक्षा का मामला मानना चाहिए। दृश्य संकेत सामग्री की निरंतरता और स्पष्ट पदानुक्रम उपयोगकर्ता को बताते हैं कि आगे क्या मिलेगा और क्यों मिलेगा। यह विचार व्यापक रूप से बताता है कि व्यवहार को इंटरफेस की किसी एक सुविधा से नहीं समझा जा सकता। उपयोगकर्ता अपने लक्ष्य, समय, उपकरण, ध्यान और पूर्व अनुभव के आधार पर संकेतों की व्याख्या करता है। पुस्तक के दृश्य उदाहरण इस प्रकार के अमूर्त व्यवहारिक प्रश्नों को ठोस बनाते हैं। वे पाठक को नियम याद करने के बजाय यह देखने देते हैं कि एक ही सिद्धांत अलग परिस्थितियों में कैसे लागू हो सकता है। परिणाम स्वरूप डिजाइनर किसी प्रचलित पैटर्न को बिना सोचे अपनाने के बजाय पूछता है कि इस विशेष संदर्भ में उपयोगकर्ता को कौन सा संकेत, कितनी जानकारी और कैसा नियंत्रण चाहिए। अंत में शोध और वैलिडेशन अपने अनुमान की पुष्टि नहीं, सीखने के साधन है। डोंट ग्रेड योर ओन होमवर्क पुस्तक के शोध और वैलिडेशन संबंधी दृष्टिकोण को प्रभावी ढंग से व्यक्त करता है। जब वही व्यक्ति या टीम किसी समाधान को बनाती भी है और उसकी सफलता का निर्णय भी करती है, तो पुष्टि पूर्वाग्रह का जोखिम बढ़ जाता है। टीम अपने इरादे, आंतरिक शब्दावली और डिजाइन तर्क को पहले से जानती है, जबकि उपयोगकर्ता नहीं जानता। इसलिए किसी प्रवाह का टीम को सहज लगना इस बात का प्रमाण नहीं कि वह बाहर के लोगों के लिए भी स्पष्ट है। वैलिडेशन का उद्देश्य डिजाइन को सही साबित करना नहीं, उसकी कमजोरियों और अप्रत्याशित उपयोग स्थितियों को खोज निकालना है। शोध भी केवल शुरुआत में किया जाने वाला औपचारिक चरण नहीं है। समस्या समझने, विकल्प बनाने और समाधान परखने के दौरान अलग अलग प्रकार के साक्ष्य की जरूरत पड़ सकती है। पुस्तक कठोर एकमात्र विधि निर्धारित करने के बजाय प्रमाण आधारित विनम्रता पर बल देती है। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि टीम को अपने निष्कर्षों, नमूनों और सीमाओं के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए। उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया को केवल पसंद या नापसंद के रूप में नहीं, कार्य पूरा करने की क्षमता, भ्रम के बिंदु और वास्तविक संदर्भ के संकेत के रूप में देखना चाहिए। इस दृष्टि से परीक्षण अंत का प्रमाण पत्र नहीं, अगला बेहतर निर्णय लेने की व्यवस्था बनता है। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन विद्यार्थियों, नए यूएक्स पेशेवरों और अनुभवी डिजाइनरों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो इंटरफेस बनाने से आगे बढ़कर अपने निर्णयों का आधार समझना चाहते हैं। इंजीनियर, उत्पाद प्रबंधक और सेवा संचालक भी इससे लाभ ले सकते हैं, क्योंकि इसमें उठाए गए प्रश्न केवल दृश्य डिजाइन तक सीमित नहीं है। उपयोगकर्ता को किस प्रकार विकल्प दिखते हैं, जटिलता कब जरूरी होती है, शोध में पूर्वाग्रह कैसे प्रवेश करता है और किसी सेवा का व्यापक इकोसिस्टम क्या है, ये सभी साझा उत्पाद निर्णयों के प्रश्न हैं। पुस्तक की व्यावहारिक शक्ति इसकी दो पृष्ठों वाली संरचना और दृश्य उदाहरणों में है। पाठक जरूरत के समय किसी सिद्धांत को अलग से देख सकता है, फिर संबंधित विचारों की ओर लौट सकता है। फिर भी इसे तैयार नुस्खों की सूची समझना गलत होगा। सिद्धांतों का मूल्य संदर्भ के अनुसार तर्क लगाने में है, न कि हर परियोजना में एक ही नियम लागू करने में। इसी कारण यह सामान्य यूएक्स पुस्तकों से अलग दिखाई देती है। कई पुस्तकें किसी खास प्रक्रिया, उपकरण या प्रचलित डिजाइन पैटर्न पर केंद्रित रहती है, जबकि यह पुस्तक अपेक्षाकृत स्थायी मानवीय व्यवहार, निर्णय, सेवा संदर्भ और परीक्षण की समस्याओं को एक साथ रखती है। यह किसी व्यक्ति को तुरंत विशेषज्ञ नहीं बनाती, लेकिन बेहतर प्रश्न पूछने, अधूरे अनुमानों को पहचानने और उपयोगकर्ता के हित को डिजाइन निर्णयों में शामिल करने की मजबूत आधारभूमि देती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं, आइरीन पेरेरा, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।